पृष्ठ संख्या 137। हमारे यहाँ कभी कोई ऐसी परंपरा नहीं रही कि नाटक, रेडियो, फिल्म, टेलीविजन को परस्पर संबद्ध कला के रूप में, अभिव्यक्ति में समान लगते किंतु भिन्न भिन्न माध्यम के रूप में समझा गया हो। न तुलनात्मक रूप में उनके माध्यमगत अंतर पर ज्यादा विचार किया गया। राकेश के नाटक पहली बार नाटक और फिल्म को निकट लाते हैं। वह फिल्म वित्त निगम के निदेशक तो थे ही, विश्व सिनेमा की नवीनतम धाराओं का पूरा ज्ञान भी उन्हें था। फिल्मों के प्रति भी उनके दृष्टिकोण में वैसी ही बेसब्री दिखाई देती है जैसी कि नाटक के संबंध में। राकेश की उसकी छोटी कहानी पर फिल्म बनी ही है। उसके आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे नाटकों पर भी फिल्में बनी हैं और पुरस्कृत भी हुई हैं। राकेश ने इस पर बराबर ध्यान देना शुरू किया था कि साहित्य फिल्म माध्यम के विकास में कितना योगदान कर सकता है। एक ओर शब्द उनके अधिकार क्षेत्र में थे, दूसरी ओर बिंबों की शक्ति के प्रति भी वह सतर्क थे। नाटक और फिल्म के लिए यह जरूरी चीज है। नाटक और फिल्म दोनों के संबंध में, दोनों के विकास के लिए वह भारतीय भूमि में ही अपनी जड़ों को गहरा जमाने में विश्वास करते थे। दोनों में पश्चिमी कला के अंधानुकरण या आधुनिकता के मोह में प्रयोगशीलता के वह विरोधी थे। उनके लेखक की ईमानदारी समझने के लिए यह एक खास बात है। इसीलिए उनके लिए इन्वॉल्व लेखक या एक्स्ट्रो बर्ट सन्यासी जैसे मुहावरे चल पड़े। अब जबकि दूरदर्शन पर महत्वपूर्ण नाटक आ रहे हैं तो माध्यमगत अंतर को समझना जरूरी हो गया है। यानी राजेंद्र नाथ के निर्देशन में दूरदर्शन पर लहरों के राजहंस आया तो यह स्पष्ट था कि आंतरिक लय और द्वंद्व को बिना पकड़े राकेश के नाटक कितने सपाट और मात्र कथात्मक बनाए जा सकते हैं। राकेश के नाटकों को पढ़ लेने के बाद कुछ बड़ी दिलचस्प बातें सामने आती हैं जो स्वयं राकेश को, उनके व्यक्ति रूप को और नाटककार रूप को जानने समझने में सहायक भी होती हैं और कुछ सवाल भी पैदा करती हैं। यह कितना सही है कि उनके हर नाटक में, बीज नाटकों में भी स्त्री पुरुष संबंध को, उसकी एक रसता और जटिलता को किसी न किसी स्तर पर उठाया गया है। आधे अधूरे में वह संबंध और भी जटिल हो गए हैं। आपसी संबंधों की सही परिभाषा खोजने की कोशिश अगर उनके अंतराल उपन्यास में है तो अंधेरे बंद कमरे, एक और जिंदगी और नाटकों में उनकी जटिलता और टकराहट मुखर हुई है। संबंधहीन संबंधों से वितृष्णा उनके पूरे साहित्य में किसी न किसी रूप में लक्षित होती है। इस वितृष्णा और जटिलता का कोई समाधान नहीं है। इसीलिए केवल छटपटाहट और एक अनवरत तलाश, नामहीन संबंधों की खोज उनके पूरे साहित्य में ही साफ पहचानी जा सकती है। यह उनके नाटकों का भी एक पक्ष है। लेकिन उनके नाटकों को आज के अनुभव से जोड़कर भी देखें तो पात्रों की दृष्टि से नाटकों की कथा वस्तु पुरुष पात्रों को ही प्रमुखतः लेकर चलती है। कालिदास, नंद, महेंद्रनाथ तीनों पुरुष पात्रों से ही तीनों नाटक जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या कारण है कि नाटकों में उनके स्त्री पात्र ही मुख्य और केंद्रीय पात्र बन जाते हैं और पुरुष पात्र उनकी तुलना में अंत तक पहुंचते पहुंचते दुर्बल मनः स्थिति वाले दिखाई देते हैं। पृष्ठ संख्या 138। यही नहीं, स्त्री पात्र ही अधिक सशक्त और सजीव पात्र बन जाते हैं। मल्लिका कालिदास की तुलना में प्रभावित भी ज्यादा करती हैं और नाटक पर छाई रहती हैं। सुंदरी का दर्प, द्वंद्व और विश्वास मन को बांध लेता है। सावित्री का तीखापन महेंद्र की व्यक्तित्वहीनता के आगे नाटक और नाटकीय वातावरण को अपनी पकड़ में रखता है। तीनों नाटकों के ये तीनों स्त्री पात्र बहुत देर तक गूंज पैदा करने वाले हैं। उनके स्त्री पात्रों में एक कोशिश है। मल्लिका प्रोत्साहन देती है, कालिदास को प्रगति के अवसर देती है। सुंदरी अपने आकर्षण में नंद को बांधे रखना चाहती है, नंद को उसके अंतर्द्वंद से मुक्त रखना चाहती है। लेकिन सावित्री कोशिशों के बाद थकी हारी चिड़चिड़ी स्त्री के रूप में सामने आती है शायद, और हाँ बीज नाटकों की स्त्री भी संभालने के प्रयत्न में लगी रहती है। यद्यपि वे अंदर से टूटी हुई, निराश, पराजित और अकेली हैं, लेकिन लेखक के न चाहते हुए भी नाटक सूत्रों का स्त्री पात्र के हाथों में एकत्रित हो जाना और पुरुष पात्रों की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली हो जाना जैसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई है। पर ऐसा क्यों? जिस राकेश के संबंध में कहा जाता है कि औरतों के लिए बड़ी तल्खी उसके मन में रहा करती थी, तो नाहक में स्त्री पात्र प्रधान और प्रभावपूर्ण क्यों? यह सही है कि राकेश के व्यक्तिगत तनाव उलझनों ने, उनके निजी स्वभाव की जटिलता ने उनके साहित्य को काफी हद तक प्रभावित किया है, लेकिन वह इतना सीमित नहीं है। उसमें आज की संवेदना को मानव मन के सूक्ष्मतर स्तरों के द्वंद्व को और एक साहित्यकार की ईमानदारी और रचनात्मक शक्ति को भी देखा जा सकता है। उन्होंने भारतीय संदर्भ में ही आज की मनः स्थिति को कहना दिखाना चाहा है। एक और खास बात है, और वह यह कि जहाँ स्त्री पात्र प्रधान हो जाते हैं, वहाँ वे सब अंत में दोषी भी प्रतीत होते हैं। कालिदास को लौट कर आने पर लगता है कि मल्लिका ने सब कुछ बदल दिया है, और वह सारे गर्जन, वर्षा, तूफान के बीच उसे छोड़कर चला जाता है। नंद भी सुंदरी को इसी जड़ स्थिति और प्रश्न बिंदुओं से घिरी स्थितियों के बीच छोड़कर चला जाता है, और महेंद्रनाथ भी सारी पारिवारिक आर्थिक समस्याओं और द्वंद्वों के बीच सावित्री को अकेला छोड़ जाता है। लगता है स्त्रियां कटघरे में खड़ी हों। और पुरुष सारी असफलता निराशा का दायित्व स्त्री पर ही डाल रहा हो। तीनों स्त्रियां पुरुषों द्वारा प्रताड़ित होने पर भी न उन्हें छोड़ पाती हैं न भुला पाती हैं, विवश पराजित स्थिति में खड़ी रह जाती हैं। दूसरी तरफ देखें तो उनके पुरुष पात्रों में भी समानता है। कालिदास और नंद एक बार वापस लौटकर आते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं। केवल आधे अधूरे का पुरुष एक बार घर छोड़कर जाता है, फिर एक बार घर वापस आ जाता है। मानसिक रूप से तीनों ही भागना चाहते हुए भी भाग नहीं पाते। पुरुष एक का वापस लौट आना आज के मानवीय जीवन की करुण स्थिति है, मनुष्य की नियति है। ओम शिवपुरी राकेश के इन तीनों नायकों के बारे में यूँ कहते हैं, आषाढ़ का कालिदास एक सिचुएशन को फेस नहीं कर सकता, उससे एस्केप करके चला जाता है। पृष्ठ संख्या 139। राजहंस का नंद सारी कॉन्फ्लिक्ट के बाद लौट कर आने के बावजूद चला जाता है। उसी नाटककार का नायक नाटक आधे अधूरे में छोड़कर चला जाता है और निश्चय ही वापस आ जाता है। इस यात्रा की बहुत बड़ी अहमियत है जो उनकी सेंसिबिलिटी समसामयिकता को दर्शाती है। यह यात्रा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा जरूर लगता है कि अनुभव दायरा और उसका स्वरूप एक ही जैसा है, जिसकी पुनरावृत्ति तीनों नाटकों में हुई है। बल्कि राकेश का अपना व्यक्तित्व भी अभिव्यक्त हुआ है। उनकी डायरी में कही यह बात यहाँ याद आ जाती है कि एक बार मन जिससे टूट जाता है, वह व्यक्ति हो, घर हो या परिस्थिति, लौटकर उसकी तरफ देखने की भी बात नहीं सोचता। संकल्प का एक क्षण आता है जिसके बाद वह कुछ हमेशा के लिए अतीत हो जाता है, पर जब तक संकल्प का क्षण नहीं आता, तब तक लगता है कि मैं निर्णय तो ले ही नहीं सकता। केवल आधे अधूरे का पुरुष सब कुछ से कटकर अलग नहीं रह पाता, वह उसी में रहने को विवश है। यह आज का यथार्थ है। ऐसा भी लगता है कि राकेश को यह अनुभव सबसे ज्यादा झकझोरता रहा हो कि हम एक दूसरे के बहुत निकट होने पर भी उसे कितना कम जानते हैं। उनके नायक और नायिकाएं सब इसी अनुभव से पीड़ित हैं। यही नहीं, विलोम, भिक्षु और पुरुष चार भी समान हैं। तीनों ही अलग करने और मिलाने की कड़ी हैं। इस तरह तीनों नाटकों के पात्र एक दूसरे के प्रतिरूप लगते हैं। कहीं कहीं तो तीनों नाटकों के संवादों में भी बहुत अंतर नहीं है। समान अनुभव का कथन सावित्री और सुंदरी के अंतिम संवादों में, आधे अधूरे और बीज नाटक शायद के संवादों में कई जगह एकदम समानता है। यहाँ तक कि डायरी के पृष्ठों में जो उनकी ऊब, घुटन, अकेलेपन का एहसास, निरर्थकता को किसी तरह तोड़ डालने की गहरी आकुलता और कुछ न कर पा सकने की उलझन व्यक्त हुई है, बिल्कुल वही शायद, और हाँ, बीज नाटकों में आधे अधूरे में भी मिलती है। लगता है जैसे यह शख्स अपने अंदर की उलझनों, द्वंद्वों से बुरी तरह जूझ रहा था और आज की मानवीय स्थिति के साथ उसे व्यक्त कर रहा था, क्योंकि आज का हर सेंसिटिव आदमी इस अनुभूति का शिकार है। अगर कहीं अपनी उलझनों और अंतर विरोधों से यह लेखक उबर पाता, ब्रैकेट में जो कि बहुत जरूरी है, ब्रैकेट क्लोज, तो निश्चित रूप से राकेश के नाटकों का अनुभव क्षेत्र ज्यादा व्यापक होता और विभिन्न परिस्थितियों, परिवर्तनों और कुचक्रों के बीच कैसे मानव को, उनके रूपों को विविध क्षेत्रों से पकड़कर नाटक में साधक रूप देना संभव होता। छतरिया में यह कोशिश दिखाई देती है और पैर तले की जमीन नाटक को देखकर भी ऐसा लगता है। एक और बात ध्यान आकर्षित करती है कि क्यों राकेश के नाटकों में जहाँ भी स्त्री पुरुष के आपसी चरम साक्षात्कार का अवसर आता है और जहाँ पर समस्या और द्वंद्व को बड़ी सशक्तता के साथ उभारा जा सकता है, वहीं उस स्थिति को वह बचा जाते हैं। संदर्भ 1, सारिका, मार्च 1973, पृष्ठ संख्या 33। 2, सारिका, नवंबर 1968, पृष्ठ संख्या 63। पृष्ठ संख्या 140। न पुरुष स्त्रियों का मौजूदा समस्या का सामना करते हैं और न स्त्रियां ही अपने को उतना कह पाती हैं जितना उनके मन में उमड़ घुमड़ रहा है। शायद इसीलिए उनके तीनों नाटकों के अंत में उद्घाटन भाषण अवश्य है। प्रथम दोनों नाटकों में उद्घाटन पुरुषों की ओर से है, आधे अधूरे में स्त्री पात्र अपना स्पष्टीकरण दे रहा है। कालिदास मल्लिका के आगे अपने को उद्घाटित कर रहा है। नंद अपने को अपने सारे द्वंद्व को लंबे संवादों में एकालाप में स्पष्ट करना चाह रहा है। अगले नाटक में सावित्री भी अपने को स्पष्ट करना चाहती है, लेकिन इतने स्पष्टीकरण और उद्घाटन के बाद भी उनके पात्रों की छटपटाहट, आंतरिक आकुलता कम नहीं होती। जैसे बहुत कुछ है जिसे कहा नहीं जा सकता, शब्द जैसे अधूरे हैं उद्घाटन की इस प्रक्रिया को राकेश ने जैसे एक नाटकीय युक्ति के रूप में अपनाया है। किसी एक युक्ति की यह पुनरावृत्ति क्यों? यह दूसरी बात है कि उद्घाटन भाषण के स्थल बड़े सशक्त और अभिनेय हैं, लेकिन वह नाटक की चली आती हुई गति के विरोध में पड़ता है। कुल मिलाकर राकेश के सभी नाटकों में कहीं न कहीं एक विचित्र साम्य है। हर नाटक एक अगली स्वाभाविक कड़ी लगती है और परस्पर बहुत जुड़ा हुआ भी। यहाँ तक कि राकेश के व्यक्तिगत विश्वास और चिंतन, विरोध और विद्रोह, आशा निराशा, सभी उनमें इतनी प्रतिबिंबित होती हैं कि उन्हें उनके नाटकों में ढूंढना और पाना अपने में एक दिलचस्प काम हो जाता है। और तब लगता है कि इस लेखक में अपने को, अपने अनुभव को अपने आंतरिक यथार्थ से जोड़कर बार बार थोड़े बहुत भिन्न रूप में अभिव्यक्त करने की कितनी तड़प है, और उसे हमेशा जैसे सब अधूरा लगता है। दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार अपने को ढालना, यह केवल आत्मघात की प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रह सकती है। यह उनका निजी स्वर है और यही उनके नाटकों का भी स्वर है। स्थिति सुख से ज्यादा उनके पात्र गति सुख पाना चाहते हैं। एक जगह राकेश ने लिखा है, जीना चाहते हो तो तुम्हें जीना चाहिए, सिर्फ जीने की बात सोचते रहने का कोई अर्थ नहीं है। यह जीने के नाम पर एक तरफ की आत्मरति है। तुम बाहर की वर्जनाओं से इतना छटपटाते हो, पर अपने अंदर की वर्जनाओं को क्यों स्वीकार किए रहते हो? निश्चय ही राकेश के पात्रों में जीने की चाह, जीने का संघर्ष है। वे बाहर और अंदर की वर्जनाओं के बीच छटपटाते हैं। उस संघर्ष और छटपटाहट का चित्रण ही राकेश के नाटकों का वैशिष्ट्य है। यद्यपि संघर्ष और छटपटाहट को बहुत दूर तक नहीं दिखाया जा सका है, पर द्वंद्व उनके नाटकों का केंद्रीय तत्व है। स्थितियां कम, उनके प्रभाव ज्यादा। राकेश इस आत्म स्वीकृति से ही शुरू करते हैं कि हम अंदर से विभक्त हैं, हर बात दो तरह से सोचते हैं, दोनों तरह से उसे ठीक पाते हैं, दोनों तरह से स्वीकार करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, वही अंतर्द्वंद है। अंतर्द्वंद ही नियति है, हमारी नहीं, सबकी। संदर्भ 1, नटरंग 21, डायरी के पन्नों से, पृष्ठ संख्या 14, 2, सारिका, अगस्त 1968, पृष्ठ संख्या 91।